खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब तीन नंबर पर देखो, इसमें नाराज नहीं होना, हो सके दास से कोई गलती हो तो आप फिर मुझे बताना, लिख कर देना पत्र, उसका उत्तर मिलेगा आपको। अब देखो ऊपर से ये तीन नंबर पृष्ठ पे ये क्या बताते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब कुल मालिक तो कहता मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं, अब ये मुकाम माने स्थान हो गया राधा स्वामी। राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक का और सच्चे साहिब का है और सच्चे खुदा का है। अब मुकाम तो एक स्थान होता है, दास तो अपनी सोच से बताओगा। जैसे एक तो राजधानी हो और एक प्रधानमंत्री हो, ये प्रधानमंत्री को भी वही बता रहे हैं और राजधानी भी उसका नाम बताओ। अब आगे देखो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक या तो मुकाम मन तो स्थान होता है, ऊंचा सबसे सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। बोलो, सतनाम तो एक नाम है जाप करने का, और ये स्थान बताओ है सतनाम को भी। मेरे ये समझ में नहीं आ रही, बस इतना पूछना चाहता हूँ। मुकाम है कि जिसे जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड सार शब्द और सत्य शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब मेरी तो बुद्धि कति फेल है भाई। एक सतनाम तो जाप करने का, सतपुरुष एक भगवान है वो पूर्ण ब्रह्म, और सार शब्द उसको पाने का तरीका, और इन्होंने सब एक ही बता दिया, स्थान भी प्रधानमंत्री भी उसके पाने की विधि भी, ये सारा कुछ एक बता दिया। तो यहाँ फिर बात दास के संबंध से बाहर है। फिर देख लो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और वही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। बताओ, स्थान और नाम तो दो हो गए। आगे देखो, इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम तो एक जाप करने का मंत्र है, सच्चा नाम। और सतनाम का मुकाम क्या हुआ, यानी स्थान नहीं, ये तो नाम है एक मंत्र जाप करने का। आगे देखो, जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड सार शब्द और सत शब्द और सतनाम सतपुरुष, बताओ सतपुरुष तो परमात्मा है, सतलोक एक स्थान है और सचखंड कहते उसे सतलोक हो, ये भाषा भिन्न है, और सतनाम तो एक नाम जाप करने का, ये सारे एक का बताएं। बताओ, गाय भी दूध भी उसका बांधन का कुट्टा भी, कहते एक का बात है। मेरी यह समझ में नहीं आ रही, और कोई बात नहीं। आगे देखो, अब ये है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी महाराज। देखिएगा जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी महाराज, किन्होंने लिखा है, श्री कृपाल सिंह जी, और इन्होंने यही, क्योंकि ये मुख्य आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज ये राधा स्वामी पंथ के प्रमुख महापुरुष माने जाते हैं। इन्होंने, ये है श्री कृपाल सिंह जी, इन्होंने 30 नंबर पे फिर इसी का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 30 नीचे देखो, फिर भी किसी के मन में कोई संशय बाकी न रह जाए, इसलिए अपने जीवन के आखिरी दिनों में अब वो चोला, जब वो चोला छोड़ने लगे, स्वामी जी ने कहा, महाराज ने स्पष्ट ऐलान किया, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, राधा स्वामी मत राय शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसे भी चलने देना और सत्संग पहले से की तरह जारी रहे और यह भी फले फूलेगा, तरक्की करेगा। अब एक तो कहता है कि मेरा तो मत है राधा स्वामी का, और दूसरा जा रहा है कहता मैं तो जा रहा हूं दिल्ली, और ये जा रहा है राजस्थान में, कहता कोई बात नहीं जाने दो। दास ने ऐसे सोच लगाई इसकी कि उस महापुरुष ने जब मना किया है तो उधर नहीं जाना चाहिए था, गुरु की आज्ञा का अवहेलना हो गया। अब और इसमें यह भी लिखा है कि स्वामी जी हुक्का पीते थे, इसमें यह भी लिखा है, कोई बात नहीं। अब यहां देखो, ये है श्री कृपाल सिंह जी के शिष्य आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी। अब ये क्या बताते हैं, इनसे किसी ने हांगकांग में पूछा जब ये विदेश गए थे कि परमात्मा को आप कैसा मानते हैं, इन्होंने कहा मैं निराकार मानता हूं। परमात्मा क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, संत दर्शन सिंह जी महाराज। अब यहां देखियो, कैन वी सी द गॉड का हिंदी रूपांतर संत दर्शन जी महाराज भेंट वार्ता। सन 1978 में प्रथम अमेरिका यात्रा में दौरान सिकोंग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, हाँ हम इसी जीवन प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात बता रहे उसका क्या प्रमाण है, जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। देखो हलवा तो आकार है दास के हिसाब से और स्वाद निराकार है, सीधी सी बात है। हलवा तो साकार है स्वाद निराकार, परमात्मा आकार है और उसके गुण होंगे वो निराकार, उनका वर्णन किए करा वो जो लाभ देगा हमें। प्रधानमंत्री आकार में है और वो लिख देगा अपने कलम तय तेरी अपॉइंटमेंट, वो निराकार होगी उस तय ठाट होगी। दास ये मानता है कि परमात्मा साकार, दास नहीं अपना अनुभव जब संतों ने बताया उसके बाद दास ने जो अनुभव किया वो ज्योका तो मिला, जो पहले महापुरुषों ने जो सचखंड सतलोक देखा उनसे ज्योका तो मिला और साथ में वेद और गीता ने उसका सेकंड किया। अब देखो यानी नीचे आइएगा, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त का क्या अर्थ है आकार में आया, अपनी कलम से लिख रहे हैं, परमात्मा जब व्यक्त हुआ अर्थात इजहार में आया, इजहार माने आकार में, अपने दो रूप परमात्मा का प्रकाश, ये पॉइंट नोट करना दास यहां खटेगी बात, परमात्मा का प्रकाश जैसे ट्यूब का प्रकाश, सूर्य की रोशनी सनलाइट, चंद्रमा की रोशनी मूनलाइट। अब मून बिना रोशनी हो क्यों करे, अब सन बिना रोशनी हो कैसे, मेरी ये समझ में नहीं आई अभी तक। जब ये महापुरुष एक तो कहते परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किया कि इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करने केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरन हम उसे रूप रूप आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं। ये तो कह रहे हैं आमने सामने बात तो जब होगी जो व्यक्त होगा। इनकी क्या सोच है कि ये गुरु को तो मानते हैं भगवान, ऊपर तो निराकार है परमात्मा और नीचा का गुरु रूप धारण बना लेता है, बस ऊपर कुछ नहीं है, वो तो प्रकाश प्रकाश है। यहां भी नहीं समझ में, क्योंकि जिन महापुरुषों ने देखा है उसको उन्होंने वहां भी ज्यों का त्यों बताया जो उसका अपना यहां पर स्वरूप रहा मनुष्य सदृश। और अभी आपके सामने चारों पवित्र धर्मों की पवित्र शास्त्र फिर पेश करेगा दास, ताकि फिर देख सके आप। अब नीचे फिर क्या कहते हैं, प्रश्न किया कि परमात्मा देखने में कैसा है, कि उत्तर परमात्मा आकार रहित है। और फिर आगे देखो, परमात्मा पूर्ण ज्योति, पूर्ण ज्योति पूर्ण प्रकाश और मूलभूत प्रभा तेज है बस, और परमात्मा का ज्योति पुंज अवर्णनीय है। आगे देखो, फिर भी शास्त्रों में बताया गया कि करोड़ सूर्य चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रूम के प्रकाश की तुलना में भी नहीं कर सकता। अब देखो, परमात्मा को उसे मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना ही सब संभव है। और जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, क्योंकि सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था अगम है, इसलिए शब्द मात्र उसका स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते। यानी प्रकाश देख लिया और कोई खुड़का दुड़का सुन लिया अंदर, तो ये ही उस परमात्मा की उपलब्धि है। और आप लिखते हैं कि शास्त्रों में तो लिखा है कि उसके एक रोमकूप में, शास्त्रों में बताया कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एकत्रित करके उसके रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। अब रोम है तो भगवान तो आकार भी है उसका। अब इन्होंने अब एक समझ लीजिए कि राधा स्वामी पंथ से ही सच्चा सौदा सिरसा जगमालवाड़ी कृपाल श्री आदरणीय कृपाल जी का यहाँ सत्संग स्थल और साथ में श्री ठाकुर सिंह जी का, इन सब की ये समझ लेना कि एक ही उद्देश्य एक ही इनकी छुरी है। अब आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज जो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, अब उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको देंगे। अब इन महापुरुष ने भी परमात्मा को निराकार माना है और केवल प्रकाश और ऐसे ही कान बंद करके उसकी धुन को सुनना उसकी उपलब्धि मानी है। देखो ठीक है, महापुरुषों की केवल लेखनी लिखी हुई दास आपके सामने पेश करेगा और फिर चारों वेदों में और साथ में पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में आज फिर दास आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है हर सत्संग में भक्त आत्मा बदलते रहते हैं और उनको कोई अधूरा सधूरा ज्ञान सुना होता है तो वो दुखी हो जाते हैं कि हमारे संतों के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। देखो दास कुछ नहीं कह रहा, मैं तो इनमें पढ़ के सुनाऊं आपको कि इसमें ये लिखा है। अब आपके सामने कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी, सबका प्रमाण दे दूंगा। अगर उसमें कोई फिर भी फेरबदलन फिर ठीक कर लेंगे, क्या बात होगी इसमें मान बढ़ाई अहंकार किस चीज की? अगर ऐसे खेचातानी में रहेंगे तो ये फैसला कदे भी ना हुआ है। अपनी मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमने अपने मूल शास्त्रों को फिर दोबारा रिवाइज करना चाहिए। अब देखो भी उन्होंने क्या लिखा है, ये है अमृत के कलश और 526 पृष्ठ पे। आदरणीय श्री हंस जी महाराज और ये आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर, आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज उर्फ बाल भगवान के पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव हैं। अब देखो अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन दर्शन, ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हैं चमनलाल टंडन, MA MA MEd, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहां से प्रकाशित है ये यहां दिखा होगा। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली, यहां से प्रकाशित है। और देखिएगा 526 पे नीचे देखिए, सभी ग्रंथ यही समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। सदगुरु के ही वेदों के सार को समझा सकते हैं और दिव्य दृष्टि देकर उस ज्योति का दर्शन करा सकते हैं। बस ये भी परमात्मा को केवल ज्योति मानते हैं, प्रकाश मानते हैं। और जहां पर सूर्य चंद्रमा आदि अग्नि की रोशनी नहीं है, आगे देखो, उस रोशनी का कोई नहीं देख सकता जब तक गुरु कृपा ना हो। आगे देखो ग्रंथों में झूठ ही लिखा है। हमारा तो संसार में लोगों की यह कहना है कि जिसको नूर चांदना डिवाइन लाइट, अब देखो डिवाइन लाइट का क्या अर्थ होता है, प्रभु का प्रकाश, डिवाइन लाइट कहा है, उसी को जरूर देखना चाहिए। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार होने से होने वाले कष्टों से का भय नहीं रहता, वैसे ही अपने अंदर का नाम प्रकाश जानने पर ही जीव सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। कहने का भाव ये डिवाइन लाइट कहा इन्होंने, प्रभु का प्रकाश कहा। अब जैसे कोई ट्यूब लाइट कहे, ट्यूब लाइट कहे और उनसे पूछे कि ट्यूब कैसा है, वो बतावे कि ट्यूब तो है ही नहीं, वो तो निराकार, हमने प्रकाश देखा, ये दास का समझ में नहीं आ रही अब तक ये बात। अब जैसे कोई सनलाइट कहे, सनलाइट, और सन को कोई पूछा भी सन कैसा है, वो सूर्य कैसा है, कहे सूर्य तो है ही नहीं, वो तो निराकार प्रकाश हमने देखा। फिर कोई कहे मूनलाइट, मूनलाइट माने चंद्रमा की रोशनी, और चंद्रमा कोई पूछे भी चंद्रमा कैसा, अगर आपने रोशनी देखी है तो वो कहते चंद्रमा तो है नहीं, वो तो निराकार है। तो यहां मेरी बुद्धि काम करना बंद करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि मैंने चारों वेदों को और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों को उस गुरु कृपा से और कबीर परमेश्वर की रजा से फिर देखा दोबारा सहानुभूति पूर्वक। दास का ये कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं या किसी का वो छोटा बड़ा बता के हे सिद्ध कर दूं या अपने आप को मैं प्रभु स्वामी बनाना चाहता हूं ना, मैं तो कति दो कौड़ी का जीव हूं और भरमी हुई आत्मा थी, प्रभु की तलाश थी और मेरे जैसी कोई कमी नहीं आज प्रभु की तलाश करने वाली प्यारी आत्माओं की। तो दास का ये उद्देश्य है कि इसको फिर देख ले सारे संत बैठकर सहानुभूति पूर्वक देख ले, खेचाताणी ना करें, और संत मार्ग तो खेचाताणी का होता है नहीं, तो प्रेम पूर्वक होता है, आपको फिर देख लेंगे। अब कोई दास ने ऐसी सोच लगी जैसे कोई अंधा हो और उसने सुन लिया किसी आख्या वाले पे कि वो रात के समय क्या सुंदर प्रकाश, क्या चंद्रमा का प्रकाश था, उसकी उस अंधे की सुन ली दूसरे ने, वो भी गाने लग गया वही माँ क्या वाह सुंदर प्रकाश था, चांदनी छिटकी हुई थी, कमाल हो रहा था। ऐसे सुनते सुनते हजारों की संख्या तक यह बात पहुंच गई। फिर उनसे कोई पूछा भी वो चंद्रमा कैसा है, वो कहते चंद्रमा तो है नहीं पर प्रकाश गजब का। अब यह बात ये इनकी थ्योरी अब यहां अड़ गई मेरी बुद्धि में। अब प्रकाश परमात्मा चंद्रमा बिना प्रकाश हो किस चीज का, मैंने दिखाते दो किसी कारण बिना प्रकाश किसी वस्तु का, छुरी से नहीं कह रहा ये दास। फिर प्रमाण दिया सब संतों ने, प्रमाण दिया उन संतों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा, उनका साक्षात्कार हुआ, उन्होंने वेदों जैसी वाणी लिखी जो की तो जो वेद में लिखी है, जो पवित्र गीता जी में लिखी है और पवित्र कुरान शरीफ में लिखी है, पवित्र बाइबल में लिखा है और गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, और उन महापुरुषों की आपने विवरण सुनी लिए जिनको दास बताता रहा, जिन जिन ने इन परमात्मा को साक्षात्कार देखा सचखंड में उस शाश्वत स्थान यानी रक्त धाम सतलोक में, और फिर नीचे आकर देखा तो ज्यों का त्यों पाया, तो उन्होंने सेम टू सेम कहानी बताई। अब आपके सामने आज के तकरीबन जितने महापुरुषों का आज बोलबाला है ये सबकी थ्योरी आ गई। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी भी परमात्मा को निराकार बताते हैं, उनका देखिएगा सत्यार प्रकाश। अब दास तो आपको ज्योका त्यों बता रहा है और कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये शास्त्र हमने खरीद रखे हैं, हम इनको आदर से पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं, देखो इसमें ये लिखा है, और अभी आपके सामने चारों पवित्र धर्मों के शास्त्र पेश करूंगा। अगर फिर भी कोई गड़बड़ दिमाग में है तो फिर उनको खरीद कर फिर देख लो एक बार, और फिर दास को मिलकर बैठकर सारे फैसला कर लेंगे। अब ये कहानी है वास्तव में फिर एक दिशा मिल जाएगी समाज को, भ्रमित नहीं रहेंगे। अब देखो अब सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, कहां से प्रकाशित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज। अब इन इन्होंने अब इनसे किसी ने प्रश्न किया महापुरुष से कि परमात्मा को आप कैसा मानते हो। इन्होंने कहा कि परमात्मा को हम निराकार मानते हैं। सप्तम समुल्लास नीचे देखिएगा प्रश्न नंबर 190 प्रश्न, ईश्वर साकार है वा निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। आगे फिर 212 पृष्ठ पे फिर यही सप्तम समुल्लास यानी सातवां समुल्लास में प्रश्न नंबर ये 212 नीचे लिखा है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार? उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते हैं। फिर तीसरी बार 225 नंबर पृष्ठ पे ये अष्टम समुल्लास और प्रश्न नंबर 225 पे प्रश्न है कि ईश्वर साकार है वा निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। काफी आगे टिप्पणी और भी दी इन्होंने, ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन दास ये दिखाना चाहता है कि इन महापुरुषों ने अपनी सोच जैसा प्रभु को जाना और जैसा समझा वो अपनी सोच का एक शास्त्र बना दिया, और ऐसा बनाने की चेष्टा की जाती है कि आने वाले समय में हो सके कोई वेदों को ना जान सके, उसको जैसा हमने जाना उसका एक सरलार्थ सा साधारण सा आम भाषा में एक विशेष विवेचन कर दें। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद यही है जो जिन महापुरुष ने जैसा अपना अनुभव हुआ सारे जीवन का, उसको जैसा भगवान को सोचा जाना समझा, चाहे किसी शास्त्र के को पढ़कर अपनी सोच से जो उसने सोच लगाई या अपने अनुभव अपना एक्सपीरियंस जो देखा वो पूरी एक पुस्तक बना दी, उसकी तरफ से वो फाइनल है, कोई बात नहीं। अब जितनी उन महापुरुष का प्रयत्न था वो बिल्कुल सही रहा, यहां तक तो दास इन राधा स्वामी पंथ से और महर्षि दानंद जी के विचारों से यहां तक तो सहमत है कि इन्होंने आन उपासना से जीव का पीछा छुटवाने की चेष्टा की। अब जहां इनको उस परमात्मा की फिर परिभाषा जो बताई है वो शास्त्रों से नहीं मिलती, इसलिए दास ने फिर इसको दोबारा से सोचकर सब शास्त्रों का मेल करके एक नए ढंग से ये शास्त्र बनाया। इसको ले जाकर देख लो, कोई त्रुटि है तो दास को बता देना, परिभाषा प्रभु की। इसमें वेदों के मंत्र भी जितने दास की बुद्धि ने काम किया वो भी लिखे हैं, और जिन महापुरुषों ने उस मंत्र का सरलार्थ किया वो भी लिखा है। और साथ में फिर ये भी अक्षमा याचना करता हूं कि मैं इन महर्षियों का बच्चा हूं और विद्यार्थी तो प्रश्न करता ही है, तो टीचरों का फर्ज बना शंका का समाधान कर देने का। अब ये फाइनल हो गया, अभी तक के पर जितने भी आज तक की छुरी उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है यही बता के परमात्मा निराकार है। उनमें से कौन कौन है, जैसे आपके सामने सभी महापुरुषों के विवरण आ चुके हैं जिसमें चारों दिन का सत्संग सुना है, आदरणीय गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को जो परमात्मा मिले जब कोई सिख धर्म नहीं था, और 10 महापुरुष हुए तब तक कोई सिख धर्म नहीं था, सब हिंदू हुआ करते थे। और जब आज से 3000 पुरुष पहले ना कोई हिंदू था ना मुसलमान सिख ना ईसाई, केवल वेदों अनुसार ही साधना करने वाली मां वो पुण्यात्मा हुआ करती थी। उसके बाद कुछ त्रुटियां आने लगी इन वेदों के पढ़ने वाले विद्वानों में, उसके बाद फिर ये मजहब बनते चले गए। अगर इन मूल शास्त्रों को आज भी समझ लेना ये क्या बताना चाहते हैं, एक मजहब हो जाएगा, कोई मजहब नहीं रहे, ये सत्कर बताता हूं आपको। तो उन्होंने अपनी सोच से ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, और जिन्होंने देखा और वेद और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र कहते वो साकार है। दास तो यही कहता है कि इसमें फिर एक बार फिर फैसला कर लो, ये साकार है कि निराकार। अब हमने जहां जाना है परमात्मा के, क्योंकि राधा स्वामी पंथ से संबंधित जितने भी महापुरुष वो ये कहते हैं कि सचखंड चलना है अपन, सतलोक चलेंगे, और वहां क्या करेंगे कि वहां परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा तो केवल प्रकाश है, अब बताओ उस परमात्मा के बिना तो हम यहां दुखी हो रहे, और वहां वो वहां भी नहीं है तो बताओ वहां हम क्या करेंगे भाई, कति जी नहीं करा जान ले। अब आप यहां आओ और कोई कहे भी सत्संग हो रहा वहां पर और महाराज जी है कि ना, महाराज जी तो निराकार है, वो तो है नहीं, फिर बता आपके क्या करने आओगे यहाँ पे, बुलाए तभी कोई नहीं आओ नहीं। तो दास का यही है कि ये शास्त्र आपके सामने फिर पेश करूंगा और शांतिपूर्वक सुनना, ये मत समझना कि मैं किसी को हे बताना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। ये तो दास में इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही, आप ही को फैसला पर छोड़ दूंगा कि आप देख लो कौन सा ठीक और कौन सा गलत लगे आपको। अच्छा लगता फिर चिंता क्या, मान ले मैं आपके 1000 के नोट को और 100 का बताऊं और आपको कॉन्फिडेंस है कि सही हमारा 1000 का है, तो फिर चिंता किसी बात की, चिंता दो कारण से होगी, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं, और या फिर आपको पता है कि वास्तव में ये 1000 का नहीं है 10 का है, आपने जानबूझ कर दुनिया को यानी किसी को बहका रखा कि मेरे पास 1000 का नोट है। तो ये जो संत जिनकी मैं बता रहा हूं किसी भी महापुरुष की, अगर वो सही है तो चिंता क्यों, इस दास को एक मूर्ख समझ लो भौंकता रहेगा उसने के लेना देना। सही है तो फिर चिंता किसी, चिंता है तो फिर चौकस हो जाओ, चिंता हुई है तो चौकस हो जाओ, उसका फिर समाधान ढूंढो कि वास्तव में क्यों कह रहा है वो एक नादान संत सबके बारे में। अब जैसे कई सब भक्तात्मा जो कहे आपका जो संत था सबका निंदा करता है, पीछे गवर्नमेंट ने 500 के नोट पकड़े थे डुप्लीकेट और टीवी पर दिखा करते हुए देखो असली तो ये है और नकली ये है, इनकी ऋण में ऐसे कंपैरिजन पूरा नहीं हो रहा, तो क्या सरकार आपकी निंदा कर रही थी? आप सोचो आपके भले की बात थी, अगर ठीक है तो फिर चिंता किसी, एक बार मिला तो लो उससे, और गलत है तो अपना भाई उसने पटको ठाक है अपना, और बंद करो उस असली को राग मार ना खाइयो। अब देखिएगा पहले आपको दिखाऊंगा पवित्र बाइबल, अब कोई क्या क्या देखा मैंने इन महापुरुषों की छुरी में, किसी ने बताया कि बाइबल तो व्यर्थ है बेकार है, कोई कहता कुरान शरीफ तो वैसे स्टोरी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई कहता वेदों को भी ये कहने वाले मिले के तो वैसे दंत कथाएं हैं, और आगे चलकर भाई कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जिनकी बुद्धि गिरती चली जाएगी ज्ञानहीनता के कारण तो वो कुछ भी टिप्पणी कर सके, पर हम नहीं माने उनकी बातों को। परमात्मा कहते हैं जब कबीर साहब से धर्मदास की वार्ता हुई, उनकी प्यारी आत्मा जिन्होंने सतलोक भी दिखाया उनको, जब कहा ये भगवान आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताई, या ये बात किसी ने नहीं बताई मालिक, इससे सिद्ध होता कि फिर ये वेद और कतेब सब झूठे हैं। तो कबीर साहब बोले बेटा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, अनजान वो है जिन्होंने इनको समझा नहीं, ये क्या बताना चाहते हैं, अपनी थ्योरी से अपने हिसाब से उनसे भिन्न व्याख्या कर दी तो उसके उपनिषद बना दिए, और वो उपनिषद अगर गीता वेदों से मिलते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो बिल्कुल सही है, कोई डिफरेंस नहीं, और जहां वेदों से भिन्न करते हैं तो वो फिर पूर्ण नहीं है। दास की ये प्रार्थना है और यही सोच है। अब देखो पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल कहां से प्रकाशित है? इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरकार रोड किल्पक मद्रास दूरभाष इतने से। इनके बिल्कुल शुरुआत में बहुत ही एक अनमोल व्याख्या है उत्पत्ति। इसमें क्या बताया कि परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तकत पर जा विराजा। सृष्टि का 7 दिन, पहला दिन नीचे देखो, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और यहां देखो ये चौथा दिन, और फिर देखिएगा पांचवा दिन, ये पांचवा दिन, और नीचे देखो छठवां दिन। अब ये छठवां दिन दिखाऊंगा आपको जिसमें परमात्मा ने मनुष्य को कैसा बनाया। यहां देखो, यहां से 26 नंबर आयत से प्रारंभ होता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार अपनी समानता में बनाए। पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, अपने परमेश्वर, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनके उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 3 बार लिखा है इस 5 लाइनों में, कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना तो भगवान मनुष्य जैसा इति सिद्धम। ये पवित्र बाइबल का फाइनल फैसला हो गया। आगे देखो, अब इसमें खाने की व्यवस्था बताई प्रभु ने। फिर परमेश्वर ने कहा, उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले और छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कहीं मांस खाने का प्रभु की तरफ से आदेश नहीं है। और ये परमेश्वर का फाइनल फैसला है। इसके बाद परमात्मा ऊपर तख्त पर जा बैठे सतलोक में रित धाम में। बाद में तो इसमें कोई ऑर्डर है किसी देव का या किसी फरिश्ते का, वो मान्य नहीं है। जैसे सुबह उदाहरण दिया था वो थानेदार वाला, वही समझना। अब आगे क्या बताया है कि और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनके जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। यानी इन पशु पक्षियों को, इवन शेर को भी भगवान ने मांस खाने का आदेश नहीं दिया। अब देखो, नीचे देखो, सातवां दिन विश्राम का। यूं आकाश और पृथ्वी, उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हुआ और परमेश्वर ने अपना काम समाप्त, जिसे वह करता था, समाप्त, सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए काम से सातवें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी कि वह पवित्र ठहरा। अब यहां देखो, अब ये पवित्र बाइबल ने फैसला कर दिया। अब क्या हो गया कि अब शेर भी सतयुग में मांस नहीं खाते थे। अब यह जचे को नहीं, अपने क्यों नहीं जचे? पहले कोई भी हिंदू समाज में मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, हुक्का नहीं पिया करते, ना कोई आर्य लोग होते थे, वो कभी दुष्कर्म ये ऐसे कभी नहीं करते थे। और अब जो अब हिंदू समाज में देख लो कितनी बिजली गिर गई। कोई न्यू कहे ना क्या, पहले वाले हमारे संत, हमारे पूर्वज कभी मांस नहीं खाते थे, अब इन्होंने गाजर मूली बना रखी, अंडे है दो बहाना मिला के कहते काली बकरे मांगे, अपने जीव लपर लपर करे और नाम देवता कहने नादान कहीं के। अब फिर ईसाई धर्म में कभी मांस नहीं खाते थे, शराब प्रयोग भी नहीं करते थे ईसा जैसी महापुरुष। अब उन्होंने उनके जाने के उपरांत ये मेरे जैसे वनमुखियों ने अपने अपने दंत कथा बना के कि ईसा जी ने भी एक दिन मछली खाई थी। ऐ थरा गजब भैया, संत कभी ऐसा मांस खा सकते हैं भक्तात्मा? फिर हजरत मोहम्मद जी ने, उन्होंने कभी मांस शराब हुक्का तम्बाकू कभी छुआ भी नहीं। और उन्होंने, उनके 180,000 अनुयायी हुए थे उस समय, और उनको सबको ये कह दिया था कोई ब्याज भी लेगा ना वो मुसलमान नहीं है, और मांस तो खावे कहा। आने वाले समय में अजीब के चठोरिया ने उन महापुरुषों के जाने के बाद यह बात बिगाड़ दी। ऐसे ही सिख धर्म में उन 10 महापुरुषों ने कदे मांस छुआ भी नहीं, और ना किसी गुरु ग्रंथ साहब में संकेत कभी मांस खाने का या उसको पाबंदी लगाई, बल्कि जो अमलहारी आत्मा कदे ना पावे पार। और अब सिख धर्म में देख ले कितनी बिजली गिर गई, और मांस तो और शराबिन के लिए सब गजा दूध और लड्डू या करे। उन महापुरुषों की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उनके वंशज, जिन्होंने सारे समाज को सुधारने के कितने भरसक प्रयत्न किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने, ये हिंदू थे जब तक कोई मजहब नहीं था, और मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाया करते। क्यों बनाया करते? अब इसको किसी ने सोचा तो है नहीं, पर वो लठम लठा हो गए। अब क्यों बनाया? कि जैसे महर्षि दयानंद जी ने क्या कोशिश की कि भगवान एक है और देवताओं की पूजा मत करो, ये लोग जो अन्य देवताओं की पूजा बता रहे हैं ये मूर्ख हैं और तुम्हारे को गुमराह कर रहे हैं। अब उन गुरुओं को दुख हो गया जो उस समय उनको गुमराह किए बैठे थे और कहा करते थे कि वेदों में ऐसा लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे आपके सामने 5-4 दिन में ये पवित्र गीता जी में प्रमाण कर दिया कि वो मूर्ख लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, और जो ब्रह्म तक की साधना करते हैं वो भी गीता में कहते ये भी अनुतम भक्ति करते हैं, ये भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से मुक्ति होगी, संकेत वेदों में दिखाऊंगा और साथ में पवित्र गीता जी में और पवित्र बाइबल में, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र कुरान शरीफ में आपको दिखाऊंगा। तो ये मुसलमान लोगों ने कुरान शरीफ में ये लिखा है कि नादान लोग जो एक परमात्मा ने छोड़कर देवी देवताओं को और फरिश्तों को पूजते हैं, वो ऐसों को पूजते हैं ना उनको नफा दे सकते ना नुकसान, और एक परमात्मा पूजने योग्य पूर्ण ब्रह्म उसका नाम कबीर है, उसकी पूजा करनी चाहिए, और नहीं तो ये नुकसान उठाएंगे। इसलिए मुसलमानों ने ये फाइनल समझ लिया कि तुम जो पूजा करते हो वह सही है, और ये हिंदू बेचारे नादान ये गलत रास्ता अपना लिया, इन्होंने अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों ना इनको समझा बुझा कर, ना माने तो जबरदस्ती अपने मार्ग को बता दें, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को अपनी विधि को सही मान रखा है, जबकि अब आपके सामने आओगे वह सही है कैसी है, अब ये कुरान शरीफ बताओगी। अब इस करके जैसे उन्होंने क्या थोड़ी सोची थी, कोई जैसे बच्चा बीमार हो जाए किसी का और ना वो इंजेक्शन लगवाना चाहो तो माता पिता जबरदस्ती भी लगवा दिया करें, उसके उसके फायदे में होता है। उन्होंने ये सोच कर ये जबरदस्ती बनाने लगे कि ये प्यारी बोली आत्मा जो है अनुपासना में लग रही है, क्यों ना इनको सतमार्ग बता दे, नो ना बेरा तुम भी गुमराह। अब आपके सामने आओगे यह कहानी। अब उसका उसने गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐतराज किया, भाई देखो तुम अपनी क्रिया करो हम अपनी करें, ठीक है तुम अपना ज्ञान दो हम अपना देंगे, जो तुम्हारा स्वीकार करेगा तुम्हारा हमारा स्वीकार करेगा, हमारा तुम जबरदस्ती क्यों करते हो। पर वो बाज नहीं आए। जब उन्होंने एक न्यारे ढंग से एक सेना बढ़ाई उन प्यारी आत्माओं के जो प्रभु को चाहने वाले थे, जो धोखा ना दे उनको, और उनका एक शिष्य माने सागिर्द अनुयायी सिख नाम बताया। फिर ये पांच आवश्यक चीज थी, जैसे सिर पर भाई पगड़ी होनी चाहिए, जैसे लड़ाई हो जाता है एकदम वो प्रोटेक्शन का काम करें, कच्छा कंघा कड़ा, ये तो एक वैसे सुविधा के लिए कृपान, वो तो इतनी लंबी कृपान रखा करते गुरु गोविंद सिंह जी, अरे भी इतनी कृपान लेकर सिख बने, ये तो एक फिर वो परंपरा बन गई। ये उन महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा था। अब ये क्या बताते हैं सिख धर्म में एकाद, कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने जब वो पांच प्यारों की परीक्षा ली, जो बकरा बकरे में तलवार घसो का बाहर निकाल दी थी परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने भी तो बकरा काटा था, उन्होंने जीवित भी कर दिया था, तुम करके दिखा दो जीवित, तुम तो बड बड जा दो और खा जाओ और जीवित करके दिखाओ उसको। अब हम कहते बंदगी की रीस वे उन महापुरुषों की, फिर उन जैसी साधना की तुम रीस भी करते हो, ये बताने की चेष्टा इन सभी सदग्रंथों से दास कर रहा है। अब कुरान शरीफ में फाइनल फैसला कर दिया, जैसे पहले शेर मांस नहीं खाते थे और अब शेर मांस खा रहे हैं, अब आपका जो चैन यह बात, क्योंकि अगर अब कोई हिंदू समाज मुसलमान समाज में कोई कह देगा ना 50 वर्ष के बाद कि हमारे पूर्वज कोई भी मांस नहीं खाता था, अब सिख धर्म के पहले वाले किसी का नहीं जचे, ऐसे आज हमारे साथ सती थी आ गई, हमारी वृत्ति गिरन लाग रही है, घर घर मंडे हो गए, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू इसलिए बुरा बताया करते ये मांस खाते थे, बाकी तो बराबर का काम था ही सारा, और अब हिंदू उस घाटने उस आगे पहुंच गए उन पे। तो अब ये दास कह रहा है कि जो बुराई करता वो धार्मिक व्यक्ति है नहीं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, सीधी सी बात है। और फिर शास्त्र अनुकूल जिनकी साधना नहीं वो भी व्यर्थ है, ये गीता और वेद बतावें। अब इनको फिर सेट कराएंगे एक बार सारे मिलकर सद्भावना पूर्वक, क्योंकि संत तो आपको आन नहीं देंगे आगे। अब आपने सोचना पड़ेगा अगर ये गलत है तो उनके पास ले जाओ, सीडी दास की बनी हुई है, और जो जिस पंथ से संबंध है वो हमें बता दो, उसके वही सीडी निकाल कर दे देंगे, और उन महापुरुषों से देख लो शांतिपूर्वक, और फिर उसमें कोई त्रुटि है तो फिर सबको बुलाकर और फिर सेट कर दें, भैया मेरे से गलती होगी आप बता दो ठीक कर लेते, अगर शास्त्रों से मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो फिर स्वीकार्य नहीं होगी। आप कुरान शरीफ देखो, ये पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य जैसा प्रभु है पूर्ण ब्रह्म, वो परमेश्वर मनुष्य जैसा है। अब पवित्र कुरान, अब इससे पहले आपको एक कथा सुनाऊंगा, इसको दिखाकर ही सुनाऊंगा, वो अच्छी लगेगी। इसमें क्या टिप्पणी दी है लेखक ने कि ये वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कुरान शरीफ पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ। और नीचे देखो कहां से है, शेरवानी संस्करण लखनऊ किताबगर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ, वहां से ये प्रकाशित है। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण लखनऊ किताबगर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ, इसमें कुरान सूरत फुरकानी नंबर 25 में स्पष्ट कबीर शब्द लिखा है और व्याख्या की है। अब ये भी सोच देखना ध्यानपूर्वक कि कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल की, चारों कुरानों में पवित्र बाइबल की 40% व्याख्या है और जो इनको मानने हैं कि पवित्र बाइबल में जो लिखा है इसमें भी लिखा है, तो ईसाई और मुसलमान धर्म को दोनों को मान्य है ये। इसमें 40% व्याख्या पवित्र कुरान शरीफ की, पवित्र बाइबल की भी है। आप देखिएगा यह सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी 25। अब नीचे देखिएगा, इसमें ये पूरा कुरान शरीफ का एज इट इज लेख है, उर्दू भाषा लिपि है और अरबी इसकी भाषा है। इसमें नीचे देखिएगा 52वीं आयत से प्रारंभ करेंगे, ये 52 नंबर आयत है। इसमें ये कबीरन शब्द लिखा है, इसको हिंदी करते समय कबीर लिखा जाता है, ये कबीरन यानी कबीर। अब क्या लिखा है इसमें, फलाई तुतियल काफरिन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। यहां पर इस महापुरुष ने इसका अनुवाद भी हिंदी में किया है। ये 51 समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ हुई। ए पैगंबर, अब ये भी सोचना हजरत मोहम्मद को कोई उसका खुदा आदेश दे रहा, जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान अल्लाह गॉड मानते हैं, और वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है जैसे गीता में अर्जुन को बोला जा रहा है कोई भगवान बोल रहा है, और तीसरे परमात्मा की तरफ संकेत करा कोई और भगवान है। ऐसा ही ये कुरान शरीफ बोलने वाला भगवान कह रहा है कि ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब देखो इन्होंने कबीरन शब्द का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का, कबीर माने बड़ा कर दिया। और ऐसे वेदों का टीका करते समय महापुरुषों ने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कांतदर्शी आदि उसके नाम दे दिए, जबकि यहां लिखना था वो कबीर परमेश्वर है। क्या इसका अर्थ क्या बनता है वास्तव में, कि ए पैगंबर जो मैं तुझे बता रहा हूं मेरी बातों पर विश्वास करना, और वो कबीर परमात्मा है, ये और लोग कबीर को परमात्मा नहीं मानेंगे तो उसके लिए संघर्ष करना, उनकी मत मानना, और वो वही है। कौन, ये देखो आगे और ये देखो, इसमें 3 बार लिखा है, 58 नंबर आयत में ये बिजोनिब इवाद ही खबीरा, ये विस्फोट हो गया, ये कबीरा है। और इसका अर्थ क्या बनता है, इवाद ही माने पूजा के योग्य, इबादत माने पूजा होती है, इवादही माने पूजा, पूजनीय, पूजा के योग्य कबीरा है, कबीर है, हम भी उसको कबीरा भी कहते हैं परमेश्वर को प्यार से। कोई आचार्य देखो फिर ये खबीरन कबीर है, ये कबीर है, प्रेम पूर्वक बैठ जा रहा हूं, ये कबीर है कबीरन। और ये अच्छा चलो, इसका अर्थ भी बड़ा ही किया उन्होंने, अभी दिखाता हूँ, शांति रखो, इतना जल्दी ना करो, ये 2 मिनट में समझ निर्माण का ज्ञान नहीं है। प्रेम पूर्वक सीढ़ी ले जाओ फिर देखो प्रेम तय, कोई जल्दी ना करो, समाधान ऐसे नहीं होगा, एक दिन में नहीं होया करे। आप सीढ़ी ले जाओ और वापस दे जाना पैसे, जमा करा के वापस ले जाना पैसे, ना समझ में आता है और फिर बताना क्या क्या दास ने। अब देखो, अब यहां भी खबीरन, ये कबीरन है 59वीं आयत में। अब देखो यहां से चलिएगा 52 के बाद ये 53 की इन्होंने हिंदी किया है, क्या किया है, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, ये वही कबीर परमात्मा है जिन्हें सारी सृष्टि रची 6 दिन में और 7वां दिन तकत पर जा बैठा, और उसी ने 2 दरियाओं को मिला चलाया, मीठा और प्यास बुझाने का, और एक खारी कड़वा, और दोनों के बीच में एक मजबूत रोक बना दी, जैसे पृथ्वी में नीचे कहीं खारा पानी है कहीं मीठा पानी है, परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था की है ऐसा बताना चाहा। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी की बेटा और ससुराल वाला यानी किसी की दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से के करने में शक्तिमान है, यानी बोलने वाला कोई और है, संकेत हजरत मोहम्मद को हो रहे और बता रहा तीसरे नंबर के कोई और भगवान की तरफ संकेत है, जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मान रहा है, वो बोल रहा है किसी और के लिए संकेत है। आप ये समझने की चेष्टा करो, शक्तिमान है और अल्लाह के और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी और देवताओं को, अन्य देवों की पूजा करते हैं वो गलत है। और काफिर तो अपने परवरदिगार की तरफ से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, वो भगवान कह रहा अल्लाह हजरत मोहम्मद का अल्लाह निराकार, ये काल ये निराकार रूप में बोलता है, मतलब एड्रेस रहता, एक शक्ति होती है कि वो हम उसको देख नहीं सकते, वो आकार में ही होता पर आकाशवाणी करता है या किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके वो बोलता है। जैसे श्री कृष्ण में बैठकर काल बोला, चारों ऋषियों में बैठकर ब्रह्म बोला, एक एक वेद का वर्णन कर दिया, ऐसे ही ये हजरत मोहम्मद को वो ब्रह्म ही बोल रहा है, काल बोल रहा है। ए पैगम्बर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। ये भेजने वाला अल्लाह कह रहा है कि हमने इसलिए भेजा तुम्हें, हम लोग इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कोई कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार पर तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर जिंदा, वो कबीर परमात्मा हर संत को जिन्होंने उन्हें आकर दर्शन दिए हैं जिंदा महात्मा का रूप ना कराए। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, जैसा चारों दिन में दास ने उसकी व्याख्या भी बताई, उन संतों से मिले, उनका विवरण भी दिया। उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में आकर मिले थे उस पर भरोसा करना, इन्होंने चैतन्य अपनी तरफ से लिख दिया, पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं अर्थात अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। जिसने, ये वही है कबीर परमात्मा, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया फिर तकत पर जा विराजा। ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची थी, 7वां दिन तकत पर जा बैठा था, आकार है भाई, और पवित्र बाइबल उसको मनुष्य जैसा बता रहा है, मनुष्य जैसा है तो आकार में है, आकार में तो फिर उसका नाम बताओ कोई और नाम है, तो मैं प्रमाण दो तुम कोई, और मैं 20 प्रमाण दूंगा आपको। वह तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर, बस बात समाप्त हो जाती, कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर है आपके सामने, फिर देख लेना घर जाके, खरीद लेना की बात है, रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर से इलम वाले से पूछ, देखो ओए होए होए, ये पॉइंट देखो और पीछे करो थोड़ा, उसकी खबर तो उसकी खबर, उसके बारे में उसके पाने की विधि, ये भगवान जो हजरत मोहम्मद का खुदा भी कहता मैं नहीं बता सकता, वो भी सरेंडर कर रहा है, उसके तो कोई तत्वदर्शी संत यानी बाखबर इलम वाले से पूछ, देखो मैं नहीं बता सकता। अब इसी का प्रमाण, क्योंकि वेदों को और गीता जी को ब्रह्म ने बोला है, काल ने, और इसी पवित्र गीता जी में देखिएगा, पवित्र गीता जी को वेद ब्रह्म ने बोला, जैसे आज सुबह प्रमाण दिया था आपको, और इसमें ये स्वयं कह रहा है काल के अर्जुन, मैं नहीं बता सकता उस परम पिता के बारे में, उसकी तो वो संत बताएगा, कोई उसके वेल नोन होगा जो पूर्ण चारों वेदों को जानने वाला होगा और पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था बता सकेगा, उसके पास जाना, वो निर्णय देगा आपको, उसकी विधि भी वही बताएगा, मैं उसके बारे में विधि भी नहीं जानता भक्ति करने की। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 62 देखो नीचे। हे भारत, ये गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म काल बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहता है, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा और उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थान यानी सनातन परम धाम या सरत धाम, चाहे सतलोक सचखंड अमर लोक कहो, ये गीता शाश्वत स्थान कहती है, वेद उसे रत धाम कहते हैं, ये सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले लोक में चला जाएगा, फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं हो। और फिर देखो 15वें अध्याय का 15वें, हाँ उसके बारे में फिर कहता कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, 4वें अध्याय का 34वां श्लोक देखिए, प्यारी आत्माओं प्रेम पूर्वक सुनते रहो, आपका दोष नहीं है, दास के भी ऐसे बहुत दर्द हुआ था जो पहली बार ये बात सुनी थी, बहुत काल आत्मा पाई थी, और देखो दर्द होगा तो हम सोचे भी इसके ऊपर, भैया महाराज जी क्यों कह रहे हैं ऐसी, इतना क्यों कठिन प्रयत्न कर रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, फिर को बुराई ठेका थोड़ा ले रहा है, क्या मैंने बुराई करने का, के शर्म दर्द थी मैं बुराई करूं बता, मैं तो आपकी तरह लाइन में लग जाता, इन महापुरुषों कर बैठ जाता, अपना भक्ति करता, पर मेरी समझ तो बाहर होगी क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया। अब देखो अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 देखो क्या कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बड़ी बाती दंडवात प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सेवा और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कहता मैं नहीं जानता, वो तो कोई और बताओगा तुझे, वो संत है उस परम पिता के बारे में जानने वाला। और अब देखो इसी का प्रमाण आपको वेदों में देता हूं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आपको दिखाऊंगा सत्कार प्रकाश में। महर्षि दानव जी कहते हैं कि वेद परमेश्वरोक्त हैं, यानी वो ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं और ब्रह्म के द्वारा एक एक ऋषि की आत्मा में एक एक वेद बोला, ब्रह्म ने वेद बोले और वेद और ब्रह्म ही बता रहा है सारी व्याख्या को। क्या बताता है ये महर्षि दानव सरस्वती, ये कहां से छपा है ये देखिएगा, प्रकाशक है आर्य सर्वदेशी, प्रकाशक आर्य सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, दूरभाष है इतना इतना इनके, ये महर्षि दानंद जी का स्वयं पूरा भाषा भाषा उन्हीं महापुरुष का ही है। इनके 40वें अध्याय के और 10वें श्लोक में ये है 44वां अध्याय और ये 10वां मंत्र नीचे देखिए सरलार्थ, हे मनुष्यो यानी ब्रह्म बोल रहा है, हे मनुष्यो जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं, यानी धीराणाम माने टिकाऊ ज्ञान वाले धीराणाम तत्वदर्शी संतों से जो हम सुनते हैं, वे लोग जो हमारे प्रति वितक्षरे माने व्याख्या पूर्वक कहते हैं, अर्थात कहते हैं वे लोग संयोग अन्य कार्यों से ही और कार्य का फल कहते हैं, उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से और कहते हैं, इस बात को तुम सुनो, यानी वो जो कहते हैं उनको सुनो, वो सही बताओगे परमात्मा के बारे में। ये वैसे तो इसकी व्याख्या आपके सामने परिभाषा प्रभु की ले जाओ, उसमें दास ने जैसी समझाई है बहुत अच्छी तरह किया। अब क्योंकि जिस महापुरुष ने परमात्मा को निराकार माना है, फिर उन्होंने जब अपना सरलार्थ भी अपने हिसाब से किया होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब क्या होता है, अब इस 15वें अध्याय के अंदर गीता जी के 15वें अध्याय के 4 श्लोक और सुन लो, फिर फैसला आपका हो जाएगा। अब कोई तो कहता है गीता ठीक नहीं, इसका फलाना अध्याय ठीक नहीं, इसका फलाना अध्याय ठीक नहीं, वो आप पर ठीक नहीं जो इस पवित्र शास्त्र में कमी निकाले, जिन्होंने आप ही कहते नाचा ना जा बतांगन टेढ़ा, वो दिखाऊंगा आपको एक महापुरुष की आर्य समाज जी की पुस्तक है जो आदरणीय श्री ये ओमानंद जी महाराज हुए हैं गुरुकुल जज्जर में, उनकी दिखाऊंगा आपको, वैदिक गीता बना रखी है, सारी गीता का सत्यानाश कर रखा है, ये भी प्रक्षिप्त है जो अपने सूत में आई ना अपनी थ्योरी के हिसाब से कहते यह ठीक है, या तो फिर सारी ये गलत कह दो कटे टंटा। अब यहां देखो 15वें अध्याय पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का ये 4 श्लोक और सुन ले, गीता बोलने वाले भगवान की कति आपका दृष्टिकोण ठीक हो जाएगा। ये पंचदशो अध्याय यहां देखो, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अयम। अब इनकी हिंदी देखो महापुरुष ने, जहां तक इन्होंने हिंदी किया बहुत अच्छा किया, जब तक इनकी बुद्धि ठीक काम करती है। यदि पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले है, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, ऊपर को जड़ है नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी तो शाखा है। इससे पहले ये चित्र देखिएगा, इस पवित्र शास्त्र के 15वें अध्याय को समझने से पूर्व आप ये देखिएगा, ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का फॉर एग्जाम्पल बताया है समझाने के लिए। बहुत बेस्ट, बहुत ही अच्छा जो है ये एग्जाम्पल है इस सारे ब्रह्मांडों के, सारे भगवानों की स्थिति को समझने का। इसमें क्या लिखा है, ये तो कहते हैं आदि परमेश्वर मूल वाले, आदि परमेश्वर सबसे पहले वाला भगवान, सनातन भगवान तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी ये शाखा है। और कबीर परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि की क्या बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। यहां से ऊपर ऊपर अक्षर प्रिय जमीन से बाहर दिखाई देता है जो पेड़, उसको पेड़ कहते हैं। उसका तना तो अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है, और क्षर पुरुष ब्रह्म ये उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये तो टहनी है और ये तना परब्रह्म है और ब्रह्म उसकी शाखा है और पात रूप संसार। अब देखो ये, फिर देखो इधर से, ये तो आदि मूल परमेश्वर समझो, वो आदि मूल परमेश्वर तो जड़ है इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की, और ये अक्षर पुरुष उसका तना समझो, और उसी से आगे डार निकली है ये ब्रह्म समझो, और इससे तीन गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी ये शाखा समझो। अब ये समझना पड़ेगा आपने, अब इससे पहले थोड़ा सा और आपको एक ज्ञान समझाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। कोई बात नहीं, प्रेम पूर्वक सुन ले, थोड़ी बहुत बूंदा में के बिगड़े ना अभी तक करे। और पहले खेतों में जाते थे, बारिश भी ऊपर आती थी और समा पशुओं का चारा भी लेकर आते थे, अरे पर भगवान के लिए भीगना है कोई बात नहीं। अब देखो ये पवित्र शास्त्र है, ये श्रीमद् देवी पुराण, इसमें ये सिद्ध करना चाहेगा दास के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम सह मातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, इसके तीसरे सकंद में, ये तीसरा सकंद, अथ श्रीमद भगवते श्रीमद भगवत भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं अपनी माँ को, क्योंकि ये दुर्गा तो इनकी माँ है और ये ब्रह्म काल इनका पिता है ज्योति निरंजन, और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के पुत्र, दोनों के पुत्र हैं ये शंकर बोल रहे हैं भगवान शंकर। सातवां श्लोक समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण क्यों बनाया प्रदान कर दिया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर संस्कर देखो, ये सातवां समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ हो। यदि दादर्मना न सदा अम्बिके कथम अहम विहित है तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय कमल से उत्पन्न होने ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, और किमो सतोगुण हरि विष्णु जी को सतगुण क्यों बना दिया। इति सीदम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये तीनों, अभी पवित्र गीता जो है ये चारों वेदों का सार है, और इसमें सांकेतिक शब्द ज्यादा हैं। अभी इसमें प्रमाण मिलेगा पहले अध्याय में कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, ये इस पहले पदर में जाए के पहले श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन भी आपके सामने ये भगवान ब्रह्म बता रहे हैं। पंचदशो अध्याय एक नंबर अध्याय श्लोक नंबर एक, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, पुरुष माने प्रभु यानी सदा वाला सबसे पहले वाला भगवान, तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और अध है शाखम नीचे को शाखा। अब दास की यहाँ थोड़ी सी ये मजबूरी होगी, जैसे इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख वाले शाखा वाले, अब दास बताएगा कि केवल नीचे अध माने नीचे को शाखा वाला। ऊपर देखो, मेरी समझ में ऐसा आ रहा कैसे होना चाहिए था, संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष रूपी वृक्ष को ये ध्यान से सुनो, तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन इसी में बता दी, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है जो सब भगवानों की सब ब्रह्मांडों की नैरी नैरी व्याख्या बता दे और शास्त्र प्रमाण हो। सह वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, ये व्याख्या भी बता दी। आगे देखो वो बाखबर, जैसे कुरान शरीफ में कहा ना किसी बाखबर से पूछ देखो, और वही संकेत ये पवित्र शास्त्र गीता कह रही है, वही वेद बता रहे, और वेद कतेब दो निभाई, ये अलग नहीं है हमारे शास्त्र, एक बता रहे, एक संकेत है इनका। अब दूसरे में क्या लिखा है कि तस उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये शाखाएं हैं, विषय पर वाला शाखा, संस्कृत भी साफ देख लेना कोई बड़ी बात नहीं, विषय पर वाला शाखा विषय विकारों रूपी ये तीनों शाखा है, सीधा सार्थ ये बड़ा, इन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया भोग रूप विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव पुरुष तृप्त, ये इनकी अपनी सोच है, सीधा अर्थ बना है विषय विकार विषय पर वाला शाखा, अधय माने नीचे को, वहां भी अधय माने नीचे ही लिखना था इन्होंने, नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, केवल ऊपर तो इस लोक में स्वर्गलोक में और इस मृतलोक में और नीचे पाताल लोक, तीन लोकों तक इनकी रेंज है, और यही मनुष्य लोक में यही कर्मानुबंधनी मूलानी, ये तीनों भगवान ही यहाँ इस जीव को कर्मों के आधार में बांधते हैं, इसको पार नहीं होने देते, और ये ऊपर और नीचे व्यवस्थित है, तीनों लोकों में ये व्यवस्थित है। आगे देखो तीसरे मुकमाल कर दिया, गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है, अब मैं पूरा बता सकता, इसको पूर्ण नहीं जानता, क्या बताते हैं संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं है, तेरे और मेरे डिस्कशन में जैसे मैं बता रहा हूँ मैं पूर्ण रूप से जानता उसको, वो तो वो तत्वदर्शी जानता, उसके लिए छोड़ दिया, वो बताएगा ऐसा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, यानी तेरी डिस्कशन गीता के ज्ञान में वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो नहीं पाया जाता, क्योंकि न उसका आदि है न उसका अंत है और न उसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यहाँ देखो इसलिए इस सुविरड मूलम यानी दृढ़ मूल वाले, यानी वो सतलोक तो उनका अदरो अमर है जहाँ वो परमात्मा है, वो तो कभी विनाश नहीं होता, वो जड़ समझो सुविरुद्ध बिल्कुल सथाई है, इसका अर्थ सीधा, और संसार रूपी पीपल को अति दृढ़ मूल संसार रूपी वृक्ष को